श्रीमद्भागवतम 10/20/19 डेट 14 मार्च 2015 स्पीकर कमलोचन प्रभु
का नहीं उडुपः चंद्रमा छन्नः ढक ढका ढका हुआ स्वज्योत्स्ना अपनी चांदनी से राजिते प्रकाशतः गणै ही बादलों से अहम मत्या मिथ्याहंकार से भासीतया प्रकाशित सभासा अपनी ही द्युति से पुरुषः जीव यथा जिस तरह अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता है और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में मिथ्याहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता, जबकि वह स्वयं शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित होता है। तात्पर्य दिया गया दृष्टांत अत्युत्तम है। वर्षा ऋतु में हम आकाश में चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि वह बादलों से ढका रहता है, किंतु ये बादल चंद्रमा की ही किरणों के प्रकाश से चमकीली बनते हैं। इस तरह इस बद्ध जगत में हम प्रत्यक्षता आत्मा को नहीं देख पाते क्योंकि हमारी चेतना मिथ्याहंकार से आवृत रहती है, जो भौतिक जगत और भौतिक शरीर से एक मिथ्या पहचान है। तो भी आत्मा की बीच चेतना से ही मिथ्याहंकार प्रकाशित होता है, जैसे कि गीता में वर्णन हुआ है, आत्मा की शक्ति चेतना है और जब वह चेतना मिथ्याहंकार के पर्दे से होकर प्रकट होती है तो वह धुंधली भौतिक चेतना के रूप में प्रकट होती है, जिसमें आत्मा या ईश्वर की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती। भौतिक जगत में बड़े से बड़े दार्शनिक परम सत्य की विषय में बोलते समय अंततः गुदले द्वैत का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार की बादल से ढका आकाश चंद्रमा की चांदनी को धुंधले तथा प्रत्यक्ष रूप में ही प्रदर्शित करता है, भौतिक जीवन में हमारा मिथ्याहंकार प्रायः उत्साहप्रद आशापूर्ण तथा विभिन्न सांसारिक मामलों से परिचित सा लगता है और ऐसी चेतना ही हमें इस जगत में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। किंतु सच्चाई तो यह है कि हम अपनी मूल शुद्ध चेतना के जो कि कृष्ण भावनामृत अर्थात आत्मा और ईश्वर का सीधा निरूपण है, धुंधले प्रतिबिंब का ही अनुभव करते हैं। इसकी परवाह ना करते हुए कि यह मिथ्याहंकार हमारी असली आध्यात्मिक चेतना को जो पूर्ण रूपेण ज्योतिर्मय और आनंदमय है, मंद बताता है, ज्योतिर्मय और आनंदमय है मंद बताता है। हम त्रुटिवश सोचते हैं कि भौतिक चेतना ज्ञान तथा आनंद से ओतप्रोत है। इसका तुलना इस विचार से की सकती है कि प्रकाशवान बादल रात में आकाश में प्रकाशित करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि चांदनी आकाश में प्रकाशित रहती है और बादल तो चांदनी के मार्ग में बाधक बनते हैं और उसे मंद बनाते हैं। बादल इसलिए प्रकाशमान प्रतीत होता है क्योंकि वे चंद्रमा की चमकीली किरणों को छानते तथा अवरुद्ध करते हैं। इस प्रकार कभी कभी भौतिक चेतना आनंदमय या प्रकाशित प्रतीत होती है क्योंकि यह आत्मा से आने वाली मूल आनंदमय तथा प्रकाशित चेतना को रोक या छान नहीं होती है। यदि हम इस श्लोक में दिए गए कुशल दृष्टांत को समझ सकें तो सरलता से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। ओम ज्ञात विनंदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां अनुमिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ये जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने पिछली बार कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के ऊपर व्याख्या करते हुए लाइट ऑफ भागवत नामक ग्रंथ को रचना किया, जो ने सोचा कि बड़े ही भागवत का दसवां स्कंद है वो भी लोगों को मिल जाएगा और दूसरा बहुत गहरा तत्व जो उसके अंदर छुपा हुआ है वो भी सबको पता लग जाएगा। उनका इस प्रकार का विचार था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है द लाइट ऑफ भागवत। तो उसमें हम अभी ये 19वां श्लोक में है लाइट ऑफ भागवत का, जिसके अंदर बारिश के मौसम के विषय में वर्णन किया गया है। जब बारिश का मौसम आता है तो बादल आता है, जब बादल आता है तो क्या करता है, चंद्रमा को ढक देता है। इसलिए कहा गया है न रराज उडुपः छन्नः, उडुपः छन्नः स्वजोत्स्ना राजितैः घनैः, घनैः जो घना बादल होता है, जब छन्नः, छन्ना मतलब आच्छादित कर देता है, कवर कर देता है। किसको कवर करता है, चंद्रमा को कवर करता है। जब बादल चंद्रमा को ढक देता है, बादल जो है चमकीला नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे गांव में रहने वाले तो देखते होंगे, रात के समय खास करके घना बादल जब चंद्रमा को ढकता है, जो चंद्रमा का प्रकाश के वजह से ये जो बादल हैं, बादल के चारों जो कोने में एकदम ऐसा विशिष्ट प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है कि क्या देखो कितना सुंदर बादल चमक रहा है। अस्तित्व में बादल चमक नहीं रहा है, चंद्रमा को ढकने के वजह से वो बादल जो है चमकीला नजर आ रहा है। चमक जो है बादल में नहीं है, चमक किस में है, चमक है चंद्रमा में। लेकिन आश्चर्य की बात ये देखिए बादल का, ये बादल चमक रहा है सबके सामने कि मैं चमक रहा हूँ करके, चमक ले रहा है चंद्रमा से, लेकिन चंद्रमा को ढक दिया, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। इसका तुलना किया जा रहा है अज्ञान। हमारे इस जगत में किस प्रकार हम अज्ञान में बसे हुए हैं, तो ये उपमा में दो चीज़ें हैं, एक बादल, दूसरा है चंद्रमा। बादल का तुलना किया गया है अहंकार के साथ, और चंद्रमा का तुलना किया गया है पुरुषः, ये शब्द आया देखिए, सभासा पुरुषा यथा, पुरुषा यथा। और इसके अंदर और एक शब्द आया है अहम मत्या, अहम मत्या का अर्थ अहंकार, अहंकार जो बादल है, और इसके अंदर जो पुरुषः वो दो चीज़ों को सूचित करता है। क्योंकि कभी कभी ये जो आत्मा है उसको ही पुरुष कहा गया है, और भगवान जो है वो भी पुरुष है। असिद्ध में दो प्रकार के पुरुष है, उपनिषदों में कहा गया है भोक्ता भोगेताम ब्रितारम चमत्वा सर्वम ब्रोतम त्रिविधिम च ब्रह्मनेतत्। ब्रह्मन जो है तीन प्रकार का है, एक है भोक्ता भोगयताम च प्रणितारम तमत्स्य, एक भोक्ता है दूसरा भोगयताम। तो वास्तविक भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा भोक्ता कौन है, वो जीव है। ये जीव जो है वो मिथ्या भोक्ता है, वो सोचता है कि मैं भोक्ता हूँ, लेकिन वास्तविकता वो भोक्ता नहीं है। वास्तविक पुरुष कौन है, कृष्ण है। लेकिन जीव को भी पुरुष कहा गया, क्यों, क्योंकि वो भोगने का प्रयास कर रहा है। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय में भी पुरुषः, और 13वें अध्याय में भी अनेकों अनेकों जगह पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंक्ते प्रकृतिर्चेर गुणान कारणम गुणसंगस्य सदसद्योनि जन्मशु, पुरुषः प्रकृतिस्तो ही। तो इस श्लोक में कहा गया है कि पुरुषः इसको किसको सूचित किया जाता है, ये आत्मा को सूचित किया जाता है। कभी आत्मा को सूचित किया जाता है पुरुष शब्द, कभी भगवान को सूचित किया जाता है। और श्री पाद श्रीधर स्वामी इस श्लोक के ऊपर कमेंट्री देते हुए, प्रभुपाद जी भी अपना टीकाओं में पुरुष शब्द का दोनों का अर्थ देते हैं। खासकर श्रीधर स्वामी कहते हैं पुरुष का अर्थ आत्मा, और श्री विश्वनाथ जी ठाकुर जो है इस पुरुष शब्द का अर्थ लिया है भगवान। तो चाहे पुरुष का शब्द भगवान लो या आत्मा लो, दोनों एक ही को एक ही सूचित करता है। क्योंकि जब अज्ञान में रहता है ना व्यक्ति आत्मा को दर्शन कर पाता है, ना व्यक्ति भगवान को दर्शन करता है। असत में आत्मा का दर्शन करना का अर्थ क्या है, आत्मा का साक्षात्कार करने का अर्थ क्या है, भगवत साक्षात्कार भी है। यह आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दो अलग चीज नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना है, भगवत साक्षात्कार होना मतलब आत्म साक्षात्कार होना है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, सूर्य को देखने का अर्थ क्या है, सूर्य को देखने का अर्थ क्या है, सूर्य के साथ साथ अपने आप को भी देखना, और अपने आप को तभी देख सकते जब सूर्य हो, है कि नहीं। तो सूर्य जैसे उदय होता है, प्रकट होता है, सूर्य का भी दर्शन होता है, साथ साथ में अपने आप का भी दर्शन होता है। और आपको दर्शन तभी कर सकते हो सूर्य का दर्शन हो, सूर्य भी साथ में हो। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दो अलग चीज़ नहीं होता है। कोई सोचे भगवत साक्षात्कार को भूल जाओ, आजकल की नया प्रणाली चल रहा है बी स्पिरिचुअल। मेरे पहले एक फैशन था, दारू पीना फैशन था, सिगरेट पीना फैशन था, कुछ समय के बाद अभी नहीं, ये सब चीज़ें जो है निम्न लोगों के लिए, अभी नया फैशन है। मैं आजकल वेजिटेरियन हूँ, आजकल नया फैशन निकला है, ये फैशन बन गया, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। लेकिन अभी लेटेस्ट फैशन क्या मालूम है लोगों का, अभी आई एम स्पिरिचुअल, मैं आजकल आध्यात्म में मग्न हूँ, आई एम बिकम स्पिरिचुअल, ये नया फैशन निकला है। अभी अगर फिर स्पिरिचुअल हो तो आपको माना जाता है, हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति हो। लेकिन उनके पास जाके पूछिए आप आध्यात्मिकवादी कैसे हो, नहीं भगवान के बारे में बात मत करो, बस आई एम इनटू सेल्फ रियलाइजेशन, मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। किसके ऊपर करते हो, बस ऑन योर सेल्फ, आत्मा के ऊपर ध्यान करो, क्योंकि आत्मा को जानो, खुद क्या है पहचानो, भगवान की जरूरत ही नहीं, भगवान है ही नहीं तो जरूरत क्या क्या कह रहे हैं, खाली अपने आप को जानने का प्रयास करो। ये आध्यात्मिकता का नाम पे चल रहा है आजकल, लेकिन उनको मालूम नहीं आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है कि हमारा भगवान के साथ संबंध को जानना। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप को जान लिया और भगवान को नहीं जाना, ऐसा कैसे हो सकता है आपने भगवान को जाना तो अपने आप को नहीं जाना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अपने आप को जानने का अर्थ है भगवान के साथ संबंध के साथ जाना, इसलिए भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार एक साथ में होता है। इसलिए अगर कहा जाए पुरुषः, ये शब्द दोनों को सूचित करता है, आत्मा को भी सूचित करता है और भगवान को भी सूचित करता है। तो सबसे पहला हम लेते हैं ये आत्मा को कैसे सूचित करता है। अभी देखिए आत्मा ढका हुआ है किससे, ये अज्ञान नामक बादल के द्वारा ढका हुआ है। तो अज्ञान क्या है, अज्ञान दो चीजों से बना हुआ है, अहम ममा इति अज्ञान। हाँ, इसके अंदर अहम मत्या, अहम मत्या, भले ही अहम ममा दो अज्ञान के पहलू हैं, इन दोनों में मूल बात क्या, अहम मैं ये शरीर हूँ, तो मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हूँ, फलाना फलाना हूँ, ये बादल है। लेकिन ये बादल जैसे आप रात के समय देखोगे कैसे दिखाई पड़ता है, चमक रहा है, दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार ये अज्ञान जो है इस जगत में चमकता है, है कि नहीं। अज्ञान जो है इस जगत में कैसे चमकता है, बहुत चमकीला लगता है। जब किसी से पूछा आप कौन हो, जानते हो मैं इधर, मैं फलाना हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मैं इधर से हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, ये सब सबके सामने चमकीला नजर आता है। उनको लगता है कि जब मैं ये बनूंगा, मान लो कोई व्यक्ति दुखी भी है, जब वो सोचता है कि मैं अगर ये बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये चमकीला बादल के जैसा है, ये चमकीला बादल जो है वो आपको दो प्रकार का अज्ञान में डालता है। एक भ्रम क्या है, वैकुंठ भ्रम, दूसरा भ्रम क्या है, आनंद भ्रम। ये दो प्रकार के भ्रम में ये अज्ञान डाल देता है, ये अहंकार डाल देता है। सबसे पहला भ्रम ये क्या है कि आनंद भ्रम। आनंद भ्रम का अर्थ क्या है, मैं अभी आनंद में हूँ। मान लो कि आप आनंद में नहीं हो तो क्या सोचोगे, अगर ये बन जाऊँगा तो मैं आनंद प्राप्त करूँगा। अरे मान लो कोई गरीब है तो वो दुखी है, वो सोचता है कि क्या सोचता है, मैं अमीर बन जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा, मैं उस व्यक्ति जैसा बन जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा। वो ऐसा नहीं सोचता मैं अमीर बन जाऊंगा, हमेशा हर व्यक्ति किसी को आदर्श बनाता है, अगर मैं इस प्रकार बन जाऊंगा ना, उसके जैसा बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसको बोला जाता है आनंद भ्रम। ये आनंद भ्रम, मान लो कि किसी को आनंद का एक अनुभूति या आभास हो जाता है तो प्राप्त होता है, जो उन्होंने सोचा कि वो परिस्थिति प्राप्त कर लेता है, तुरंत और एक भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है, मैं इसी प्रकार रहूंगा जीवन भर, वैकुंठ भ्रम कहा जाता है। तो ये दो प्रकार का भ्रम में ये डाल देता है। किस प्रकार, ये बादल, ये बादल को अगर कोई देखे ऐसा लगता है कि क्या सुंदर है, क्या चमक रहा है, लेकिन ये बादल की जो चमकीलापन के प्रति जो आकृष्ट हो जाता है वो उस बादल के पीछे चंद्रमा को देख नहीं सकता, बादल के पीछे चंद्रमा को देख नहीं सकता। अगर कोई पूछे बादल चमक रहा है कि क्या चमक रहा है, ये बादल के पीछे कुछ है क्या, वो रिसर्च नहीं कर पाएगा क्योंकि केवल चमकीला बादलों के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ये नाम रूप इत्यादि जो गुण ये जो चीज़ें हैं भौतिक जगत के, तो इन चीज़ों के प्रति जब तक व्यक्ति आकृष्ट रहता है, वास्तविकता में इसको चमकाने वाला, इसके अंदर वो आभास प्रकाशित करने वाला जो आत्मा है उसको कभी पहचान नहीं सकता, वो तो कभी देख ही नहीं सकते, तो सोचेगा भी नहीं व्यक्ति। इसलिए जो अज्ञान में है वो स्वतः अपने प्रयास के द्वारा ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, अपनी 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 बुद्धि के द्वारा कभी हो ही नहीं सकता, इट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर भ्रमित व्यक्ति हैं, वो भ्रमित व्यक्ति जो है कितना भी लाख प्रयास कर ले, मान लो कि आध्यात्मिक ग्रंथ को भी पढ़ ले है फिर भी उसका कुछ हो नहीं सकता। जब तक कोई आके बताएगा नहीं तुम मूर्ख हो, ये देखो बादल, ये इसके अंदर कोई चमकीला नहीं, अगर चमकता तो पूरा चमकना चाहिए, कोने कोने में क्यों चमक रहा है। तो अगर कोई पूछे तो उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो इसके बारे में विचार ही नहीं करता व्यक्ति। इसलिए इधर बहुत महत्वपूर्ण शब्दों में इधर कहा गया अहम मत्या भाषितया, ये इतना अहंकार, इतना ये चीज़ है भयानक और खतरनाक चीज़ है, जिसके वजह से वो चमक रहा उसी को छुपा देता, उसी को ढक देता है। इतने बड़े दुखाबाज है, मान लो कि आपने बहुत कुछ अच्छा सा चीज़ बनाया, कोई और आके बोले सबके सामने देखो मैंने बनाया एडवर्टाइज कर दिया, तो उसके बड़ा धोखेबाज और कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। ये अहंकार ऐसा चीज़ है, वो आपको ऐसा धोखा दे देता है कि वास्तविकता में उसकी जो महत्व, उसकी सत्ता, अहंकार की सत्ता कहाँ से है। अहंकार की सत्ता इसलिए है क्योंकि उसके पीछे वो आत्मा है। इतना हद तक कि ये अहंकार जो है आपको प्रतीत करा देता है मैं ही आत्मा हूँ, जैसे ये बादल आपको प्रतीत करा देता है ये चमक जो है मेरे से आ रहे, आत्मा है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द पर्सन। तो वास्तविकता में सुख और दुख का जो अनुभूति होता है वो अहंकार में या चित्त में होता है, जो आत्मा का एक मिश्रित स्वभाव है। कैसे मिश्रित स्वभाव है, आत्मा से प्रकाश उत्पन्न होता है जिसका नाम है चेतना, और चेतना जब तीनों गुणों के द्वारा मिश्रित होता है वो जो है उसको चित्त कहा जाता है। वो जो चित्त वो अहंकार का रूप लेता है, मन का रूप लेता है और बुद्धि का रूप लेता है। भगवद गीता में आपने तीन सूक्ष्म तत्वों के विषय में सुना, क्या है वो, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल देवयुति संवाद में देखेंगे सूक्ष्म शरीर जो है तीन चीज़ों से नहीं बल्कि चार चीज़ों से बना हुआ लिखा है। क्या है वो चीज़, मन बुद्धि अहंकार के साथ में चित्त जोड़ा गया है। वो क्या है वो चित्त, वो चित्त ये है, क्या है वो चेतना और तीनों गुणों का मिश्रण। ये जो बादल क्या है, वो चंद्रमा से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है जिसको हम चेतना के बराबर तुलना किया, और ये बादल क्या है, वो तीनों गुण। ये बादल और ये जो चंद्रमा का जो प्रकाश का मिश्रण जो है उसको चित्त कहा गया है, जिससे अहंकार बनता है, जिसके द्वारा वो मन और बुद्धि और बाकी पूरा संसार निर्माण होता है। तो आपसे एक अगर एक छोटा सा प्रश्न पूछो, मान लो कि आपने रसगुल्ला खाया तो मिठास का अनुभव हुआ, मिठास का अनुभव कहाँ हुआ बताइए। आपको कोई जोर से झापड़ मारा, आपने बोला बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द का अनुभूति कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है वो दर्द का अनुभव, कौन कर रहा है, हु इज एक्सपीरियंसिंग द पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो आप कहाँ हो रहा है दर्द, पेट में हो रहा है, तो पेट में हो रहा है तो दर्द क्या पेट में अनुभव होता है, कौन अनुभव करता है उसको। तो क्या कोई कहे मेरा मन अनुभव कर रहा है, मन तो जड़ वस्तु है, आपने सुना है ना मन बुद्धि अहंकार जो है जड़ है, जड़ वस्तु में कभी अनुभूति होती है, नहीं होता है। कोई कहे मेरा हाथ में दर्द हो रहा है तो यहाँ हाथ अनुभव कर रहा है, नहीं, हाथ भी जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में अनुभूति कहाँ होता है। तो अनुभव जो करने वाला चीज़ है वो दुखों का अनुभव, सुख और दुखों का अनुभव जो है ये संगात चेतनात्ति, ये जो चित्त नामक चीज है, जो जैसे हमने बादल और चंद्रमा का प्रकाश का मिश्रण के रूप में तुलना किया है, जो चेतना और तीनों गुणों का मिश्रण जो है वो अनुभव करता है। तो कोई कहे मैं आत्मा बहुत दुखी है, वास्तविकता में क्या ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आत्मा का दुख है? दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर आपको कोई हाथ काट दिया तो क्या आत्मा का दर्द हो रहा है? हाथ कटने का दर्द कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा अनुभव करता है? नहीं, आत्मा अनुभव नहीं करता है। आत्मा का केवल एक ही दुख है, क्या है वो? वो कृष्ण का विस्मृति ही एकमात्र आत्मा का दुख है। लेकिन बाकी संसारिक सुख और दुख को कौन अनुभव कर रहा है? वो आत्मा अनुभव नहीं कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है कौन? वो चित्त नामक जो चीज है, जो अहंकार का कारक है, जो मन का, बुद्धि का, ये सारा भौतिक जगत का मूल कारक है, उसको वो अनुभव कर रहा है। इसलिए हमेशा हम ये नहीं बोलते कि हमारे हाथ पैर की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, चित्त शुद्धि की बात करते हैं। चित्त शुद्धि का अर्थ क्या है? कि हम ये तीनों गुणों से मिश्रित ये जो चित्त चेतना जो है, उसको हम कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे तरीका है। तो ये जो श्लोक में बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा बताया गया, किस प्रकार आत्मा को ये बादल अहंकार ढक के, वो अहंकार जो है वो आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही मेरी सब कुछ हूँ, इस प्रकार वो समझा देता है। दूसरा पुरुष का शब्द का दूसरा अर्थ हमने कहा क्या था? वह भगवान। तो भगवान को भी ढक देता है। तो ये जो अहंकारी व्यक्ति जो है वो भगवान को पहचान नहीं सकता, ये पुरुष को पहचान नहीं सकता। पुरुष मतलब आप भगवान के रूप में लेंगे, कैसे पहचान नहीं सकता? हाउ ही कैन नॉट अंडरस्टैंड? क्योंकि जब तक वो अहंकारी रहता है या उनके अंदर अहंकार रहता है, अहंकार मतलब क्या है कि मैं ये शरीर हूँ या मैं करता हूँ, अहम करता इति अहंकार, तब तो वो भगवान को पहचान नहीं सकता। हाउ, क्यों है, क्यों पहचान नहीं सकता? इसलिए पहचान नहीं सकता क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता है। बिकॉज ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी गॉड, मैं खुद भगवान हूँ, तो और कोई भगवान है ही नहीं कुछ अस्तित्व में। आ इस जगत का कोई भी सिद्धांत लीजिए, जो भगवान के पास जाके प्रार्थना करने वाला भी व्यक्ति सोचता है मैं ही भगवान हूँ। शुद्ध भक्ति को जब तक पालन नहीं करता है तब तक वो क्या सोचता है? भगवान के पास जाने पर भी सोचता है हे भगवान मेरे लिए ये करना, मतलब क्या है, तुम मेरे नौकर हो। मतलब थियोरेटिकली मान भी गया कि एक कृष्ण भगवान है, एक तरीके से मान भी गया, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या रहता है, मेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान की अस्तित्व है। यानी जब तक मेरी इच्छा पूर्ण करेगा वो मेरे लिए भगवान है, यानी जो व्यक्ति मेरा इच्छा पूरा करता है वो भगवान है। इसकी वजह से ये दोनों तरीके से, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, ये दोनों असंभव है। किसका? जो अहंकारी है, क्योंकि वो उन्हीं आत्मा से, उसी भगवान से वो प्रकाश देता है और उसी को ढक देता है, उसी को छुपा देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो किसी ने एक कुक है, रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा खाना पकाया, एकदम बिल्कुल बढ़िया खाना, और जो वेटर होता है ना वो आपको आके सर्विंग करता है, तो तारीफ किसको जाता है? वाह बढ़िया खाना खिलाया, किसको बोलते हो आप? कुक को नहीं बोलते हो, ये वेटर को बोलते हैं। अगर टिप भी देते हो तो किसको टिप देता है, किसको पैसा मिलता है? उसको मिलता है। लेकिन पीछे जो कुक है, वास्तविकता है जिसे बनाया, वो उसको कोई पहचान दे, उसको कोई पूछता नहीं है, उसको कोई मिलता नहीं है। तो उसी प्रकार ये अहंकार जो है इस प्रकार का धोखा हमारे साथ करता है, किसी और के साथ धोखा नहीं करता, ये अहंकार अपने आप के साथ धोखा करता है। द प्राइड, ये जो अहंकार जो है, अहम ममा, इससे द्वारा किसको धोखा, किसको नुकसान है? हमको ही नुकसान है। यू आर चीटिंग योर सेल्फ। जैसे ये बादल जो है वो अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, मेरे से सब कुछ चाह रहा है, चंद्रमा को ढक दिया, लेकिन वास्तविकता में कितना देर ढक पाएगा, कितना देर कुछ कर पाएगा? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लॉन्ग। वास्तविकता तो मालूम पड़ ही जाता है। इसलिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है इस श्लोक के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो अभी हम श्रीवास ठाकुर के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। हम रोज़ पंचतत्व प्रणाम मंत्र को रोज़ जप करते हैं, उसमें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो शब्द आया है श्रीवास आदि, तो आदि शब्द के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है? आदि मतलब जितने भी अन्य भक्तगण हैं, और जितने भी अन्य भक्तगण हैं वो किसके नेतृत्व में है? वो श्रीवास ठाकुर के नेतृत्व में है। तो हमारे दो नेतृत्व करने वाले दो भक्त हैं, एक है स्वरूप दामोदर, दूसरा है श्रीवास। स्वरूप दामोदर हमारे गुरु है, इसे स्वरूप है रघुनाथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु शरण में आए तब उधर सब लोग पहचानते थे पुरी में कि स्वरूप है रघुनाथ, स्वरूप का रघुनाथ है। और जगन्नाथपुरी में जो गुंडीचा मंदिर मार्जन हो रहा था, एक भक्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चरण में पानी डाल के वो चरण जल लेके पीने लगा। तुरंत चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ स्वरूप दामोदर को बुलाया, देखो तुम्हारा ये गौड़िया लोग क्या कर रहे देखो। तो चैतन्य महाप्रभु ने इंडिकेशन दिया कि सारे जितने गौड़िया भक्त उनको स्वरूप दामोदर को सौंप दिया गुरु के रूप में। लेकिन भले ही स्वरूप दामोदर को सौंप दिया, एक कहा गया इधर कि श्रीवास आदि, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये गौर भक्त वृंद जो है वो सारे लोग कौन है? वो श्रीवास के नेतृत्व में है। इसलिए दोनों नेता है, एक स्वरूप दामोदर गुरु के रूप में है और वर्ग के रूप में देखा जाए श्रीवास ठाकुर के वर्ग में है। क्योंकि पंचतत्व प्रणाम मंत्र में दो, एक महाप्रभु है दो प्रभु है, एक महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, दो प्रभु कौन है? वो है अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, दोनों प्रभु है। कभी भी नित्यानंद महाप्रभु नहीं बोलना चाहिए, नित्यानंद प्रभु है, और अद्वैत महाप्रभु नहीं बोलना चाहिए, अद्वैत प्रभु है। ये तीनों जो है विश्व तत्व है, पंचतत्व है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जो है तीनों विश्व तत्व में आते हैं। दे आर ऑफ द परतत्व विश्व तत्व। बाद में जो इसमें ये विश्व तत्वों में भी पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्य भक्ति शक्तिकम, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु जो है वो परतत्व है और नित्यानंद प्रभु जो है भक्त रूप भक्त स्वरूप है, और अद्वैताचार्य जो है भक्त अवतार है। तो अवतार तत्व कौन है? अद्वैताचार्य। और स्वरूप तत्व कौन है? वो नित्यानंद प्रभु है। और परतत्व स्वयं तत्व स्वयं प्रकाश स्वयं विग्रह कौन है? वो है वो चैतन्य महाप्रभु है। तो सबसे पहला तीन तत्वों के विषय में चर्चा किया, वो तीनों विश्व तत्व हैं, उनमें से एक परतत्व है या स्वयं रूप है, और दूसरा स्वयं प्रकाश है या स्वरूप है, और अंततः ये जो अद्वैताचार्य जो है वो अवतार तत्व है। बाद में और दो बचे हुए हैं, उनमें से कौन है? गदाधर पंडित। ये गदाधर पंडित जो हैं श्रीमती राधारानी का अंश अवतार है। श्रीमती राधारानी का अंश अवतार होने की वजह से वो कौन है? शक्ति तत्व माना गया है। कौन सी भाव में है गदाधर? गदाधर दो भाव में है। एक भाव है जब चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के विरह में अत्यंत विरह को प्रकाशित करने वाला विग्रह है गदाधर पंडित, और साथ साथ में और एक बात भी है, जब कृष्ण राधारानी का रूप धारण करके या भाव को स्वीकार करके आए, राधारानी स्वयं आए, मेरा भाव को तो ले लिया कृष्ण लेकिन मेरा नाटक बराबर कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखने के लिए, नज़र रखने के लिए, इसलिए हमेशा वो गदाधर पंडित देखते हैं कि हाँ बराबर कर रहा है कि नहीं। कृष्ण तो है लेकिन राधारानी का रोल करना इतना साधारण चीज़ नहीं है, मेरा रोल करना इतना साधारण चीज़, और एक बार नज़र भी रखते हैं, ऐसा कहा गया है। और अभी आए गदाधर के बाद कौन है? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर जो है जीव तत्व है, भले ही जीव भी शक्ति है लेकिन थोड़ा सा राधारानी जो है वो भगवान के जो स्वरूप शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, स्वरूप शक्ति का प्रकाश है, चित शक्ति का प्रकाश है, लेकिन ये जो गदाधर जीव शक्ति है ये भगवान के जो स्वरूप शक्ति है उसका आंशिक प्रकाश है। तो आंशिक प्रकाश होने के नाते भले ही शक्ति ही तत्व है फिर भी हम उनको जीव तत्व बोलते हैं। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर जो है वो जीव तत्व है, इस जीव। और साथ साथ में भी कहा गया है श्रीवास ठाकुर कौन है? वो है नारद मुनि है। नारद मुनि विषय में आप जानते हो वो क्या जप करते हैं? ओम नमो नारायण नारायण जप करते हैं। लेकिन नारायण करते करते उनको आकर्षण किससे हो गया, कृष्ण आकर्षण हो गया। तो व्रज में गए जाके नारद जी एक वन में गए, उधर जाके उन्होंने बहुत एक एक तोता और दूसरे तोते से बात करते हुए उन्होंने सुना। क्या बात कर रहे थे, अलग अलग सिद्धांतों के बात कर रहे थे। अचानक से बातें सुन के नारद मुनि का चित्त भ्रमित हो गया, क्योंकि वो तो एक तोता ने कहा एक ऐसा सुंदर लड़का है जिसके पीछे अनेकों लड़कियां पागल हैं। अभी ये बात सुन के नारद जी का चित्त भ्रमित हो गया। नारद जी ब्रह्मचारी है और उनको लगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ इधर, मैं भूलना चाहता हूँ। बहुत प्रयास किया नारद जी ने भूलने के लिए, लेकिन यही बार बार स्मरण आया कौन है वो लड़का जिसके पीछे अनेकों लड़कियां भागती है। तो कितना भी भूलने का प्रयास किए नारद जी का हो नहीं रहा, तब शिव जी का शरण लिया। तो शिव जी के शरण लेने के बाद नारद जी, शिव जी ने मंत्र दिया, मंत्र जप करना शुरू किया। जप करते ध्यान लगाने के लिए प्रयास किए मंत्र के ऊपर, और इतना प्रयास करने के बाद भी उनका मन में वही आ रहा है कौन है लड़का, मैं देखना चाहता हूँ। उनके मन में बड़ी आतुरता हुई। तो उस समय नारद मुनि के सामने कुछ आवाज़ आए, जो पायल का आवाज़ आया, तो आँख खोल के देखो उनके सामने एक बहुत सुंदर सी बालिका है। तो ये बालिका साथ में होने को सहेलियाँ थे, उन सबको साथ बात करते हुए कहा कि उस सहेली ने कहा कि बाबा जी आप इधर हो तो हम आपसे मिलने आए हैं। तो इनको देख के नारद जी और परेशान हो गए, बोले बस अभी मुझे शिव जी के द्वारा दिए गए मंत्र को ध्यान करना है। तो बहुत सारा संवाद हुआ। तो उन्हें कहा कि वो कौन है वो लड़का जिसके पीछे सब बहुत सारे लड़कियां भागती, मैं सुना। तो लोग ने क्या किए, ठीक है, वो नारद जी को एक प्रकार का विरह था, लेकिन ये जो विरह है उसको वो पार्षदों के द्वारा अनुभव किया गया विरह के बराबर तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अलग प्रकार के विरह था उनके अंदर, ऐसी आतुरता थी। वो कौन है वो लड़का, मिलना चाहता हूँ। तब ये जितने भी गोपियाँ हैं उन्होंने कहा चलो हमारे साथ साथ में चलो। नारद जी ने कहा कि आपके साथ साथ में, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो उन्हें कहा ठीक है, हम आगे जाएंगे, आप पीछे पीछे आना। तो नारद जी पीछे पीछे जा रहे थे, आगे जा रहे थे। एक जगह आने के बाद क्या किया, वो छोटी सी बालिका आके नारद जी को धक्का दिए कुंड में। तो नारद जी कुंड में गिर पड़े, फिर बाहर आए तो वो उनका शरीर जो है बदली हो गया था। सोचने लगे क्या हो गया। तो बालिका ने कहा हमारे वो लड़के से आपको मिलना है तो आपको तो यही शरीर में जाके मिलना होगा। इस प्रकार वो नारद ही बन के गए। तो नारद जी का उधर खाली उस व्रज में प्रवेश मिला नारदी के रूप में। तो बाद में बहुत लंबा छोड़ा वर्णन है किस प्रकार वापस नारद बन जाते हैं। ये सब होने के उस समय उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में अपने विरह की बातों को वर्णन करते हुए और व्रज की गोपियों की महिमा को वर्णन करते हुए ने कहा भक्ति मतलब यही है, यथा व्रजवधु। जिस प्रकार व्रजवधु भक्ति करते ही भक्ति है, बाकी सब भक्ति है, लेकिन वास्तविक भक्ति जो है ये व्रजवधु लोग जिस प्रकार भक्ति करते उसी प्रकार का है। जब ऐसा उनके मन में आया, उनके अंदर तीव्र इच्छा थी। क्या इच्छा थी, मुझे भी उस प्रकार का भक्ति प्राप्त करना है। तब नारद मुनि जो महान ब्रह्मचारी है तो उनको एक गृहस्थ का रूप धारण करना पड़ा, श्रीवास ठाकुर के रूप में आना पड़ा। और उनकी जो पत्नी मालिनी जो है वो भी कृष्ण के साथ वात्सल्य के संबंध में रहने वाली है, और वो उनके साथ विवाह करके नारद जी जो है वो श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। और श्रीवास ठाकुर का घर क्या है, श्रीवास आंगन है क्या, श्रीवास आंगन जो है वो रासस्थली है। जो भगवान का जो रासलीला होता है वो रासस्थली श्रीवास आंगन है, वो रासस्थली जहाँ केवल उनके कृष्ण के निकटतम जो गोपियाँ हैं उनके साथ करने वाला जो रास है वो रासस्थली है। वैसे दो प्रकार का रास है, ऐसे अनेकों प्रकार के कैटेगरीज लिखा हुआ है, लेकिन दो ब्रॉड है। एक महारास होता है जिसके अंदर सारे गोपियाँ लोड है, जो भी साधन सिद्ध हो चुकी हैं, देवचरी हैं, वो सब लोग आ सकते हैं। जैसे भागवत में जिसका वर्णन है वो उस रास जिला में सभी लोग सभी लोगों को स्वीकार किया भगवान ने, इसलिए उसका वर्णन इधर है शारदीय रास में। उसके अंदर करोड़ों करोड़ों गोपियों को कृष्ण ने बासु बिता के बुलाए थे। लेकिन जो नित्य रोज होने वाला जो रास जो है उसमें केवल गिने चुने गोपियों को ही एंट्री है। तो शिवास आंगन जो है वो उस प्रकार का रास्तरी है। और चांद काजी के साथ चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन लेके गए, वो कौन सा है? वो महारास है, जिसके अंदर नवद्वीप सारे वासियों को सबको बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने कहा चलो चांद काजी से मिलने जाएंगे, और रास्ते में सबको लेके गए, ये महारास है। अब बोल रहे जी क्या बोल रहे प्रभु जी, रास लीला हो रहा है शिवास आंगन, उस पर क्या रास हो रहा है? मैंने संकीर्तन हो रहा है, गोलोक के प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो अस्तित्व में गोलोक का जो प्रेमधन है वही संकीर्तन के रूप में लाए। प्रेमधन क्या है? वो रासलीला है। वही रासलीला जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ किया? शिवास आंगन में। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शिवास आंगन में किया, अपने निकटतम संगियों के साथ किया। कैसे किया? निरंतर कीर्तन, निरंतर कीर्तन। कैसा कीर्तन था? ऐसा अद्भुत कीर्तन, अद्भुत कीर्तन की सारे नवद्वीप में ऐसे हल्ला चलता था, ऐसे ही मच गया था कि हल्ला मच गया था कि अंदर ये लोग बैठ के करते क्या है लोग। हाँ, कुछ तो बोलेगा कि लोग जो है एकदम कीर्तन करते, अद्भुत कीर्तन होता है। अनेक लोगों ने प्रयास के अंदर जाने के लिए, लेकिन प्रयास करने के बाद भी आपको मालूम है बुढ़ी औरत जो छुपी हुई थी उधर, लेकिन महाप्रभु का कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा था, तुरंत उनको निकाल दिया। एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी था, उन्होंने भी सोचा कि मैं जाके देखूंगा अंदर। और एक ब्राह्मण ने भी सोचा था कि मुझे एंट्री मिलना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी को एंट्री नहीं दिया, किसी को अंदर आने दिया, केवल उनके निकटतम पार्षदों के साथ जो कीर्तन चलता था। तो श्रीवास ठाकुर का महिमा देखिए। एक बार ऐसा हुआ कीर्तन करते करते अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, श्रीवास ठाकुर को ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो दरवाजा खोल के अंदर गए। एक आंगन में कीर्तन चल रहा है, रूप में अंदर जाके देखे तो शिवास ठाकुर के परिवार वाले सब लोग रो रहे, और शिवास ठाकुर का एकमात्र पुत्र जो है उसका मृत्यु हो गया। तो शिवास ठाकुर ने सबको कहा चुप, अभी आपका आवाज सुनाई नहीं पड़ना चाहिए किसी को, और आपके आवाज की वजह से महाप्रभु का कीर्तन में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया तो आज से मुझे भी नहीं देखोगे। सबको चुप कराया, फिर वापस श्रीवास ठाकुर अंदर गए और कीर्तन कर रहे हैं आराम से। पुत्र का मृत्यु हो गया और अंदर कीर्तन चल रहा है, तो महाप्रभु को कुछ लगा कुछ तो गड़बड़ है। श्रीवास ठाकुर से पूछा क्या कुछ गड़बड़ है? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, कीर्तन करो, कीर्तन चल रहा है। तो बाद में महाप्रभु को कुछ संदेह हुआ, तो पीछे अंदर जाके देखे तो श्रीवास ठाकुर का बालक मरा हुआ है। अब देखिए श्रीवास ठाकुर का स्वयं का पुत्र मृत्यु हुआ, लेकिन उनका संकीर्तन आंदोलन में कितना उनका ये रुचि था कि महाप्रभु कीर्तन में जरा सा भी कुछ भी रुकावट नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का महान शिवास ठाकुर, महान गृहस्थ, पुत्र का मृत्यु होने पर भी जरा सा उनको चेहरे में शोक प्रकाशित नहीं किया, जरा सा उन्होंने ये नहीं सोचा यही क्या हो गया, अभी महाप्रभु भी हमारे घर में मृत्यु हो गया, कुछ करो, रोना धोना कुछ नहीं, आनंद में कीर्तन कर रहे। ये शिवास ठाकुर का महिमा है, अनेकों अनेकों महिमा है। लेकिन श्रीवास नित्यानंद प्रभु जी भाई नवद्वीप में तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकाशित किया अपने जो लीलाएं, भक्त की जो लीलाएं प्रकाशित की, जब नित्यानंद प्रभु आए उन दोनों का मिलन हुआ नंदन आचार्य घर में। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को श्रीवास ठाकुर के घर में रखा था। श्रीवास ठाकुर ने घर में रखा तो नित्यानंद प्रभु का व्यवहार तो मालूम है आपको, वो कुछ भी करते, अवधूत है। अवधूत मतलब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्या कब क्या बोलेंगे क्या करेंगे कोई हिसाब, कभी एकदम अपने आप बड़ा सुंदर श्रृंगार करेंगे, कभी अपने नग्न हो जाएंगे, हाँ ऐसे भागेंगे, कभी अचानक जो है गंगा में कूद के ये जो मगरमच्छ के साथ खेलने लग जाएंगे, कभी इत्यादि लोगों को हिसाब किताब नहीं होता। अभी एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही मजाक में कहा शिवास ठाकुर को, क्योंकि शिवास ठाकुर इत्यादि लोग इतना अच्छा देखभाल करते, इतना अच्छा देखभाल करते थे कि अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम के साथ मालिनी नित्यानंद प्रभु को देखभाल करते। अचानक जो है नित्यानंद प्रभु जो आते थे घर में और माननी का स्तनपान करने लग जाते थे, कोई कुछ हिसाब नहीं रहता, कभी पागलों जैसे हंसते हंसते जाते थे। तो ये व्यवहार देख के चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास ठाकुर को देखो नित्यानंद प्रभु जो है वो पता नहीं कौन सा कुल का है, कोई हिसाब किताब नहीं उनका, हाँ कभी कुछ भी व्यवहार करते, आपका घर में रखते हैं उनको, ये ठीक नहीं, उनको निकाल दो घर से, हाँ इनका चरित्र हमको नहीं मालूम, कौन से कुल का है कुछ भी नहीं मालूम। तब श्रीवास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर नित्यानंद प्रभु को मैं जो वेश्या के घर में प्रवेश करते हुए भी देखता हूँ, या वो जो दारू खाना होता है उधर से बाहर आते हुए भी देखता हूँ, तो मेरा उनके प्रति जो विश्वास है उसके अंदर ज़रा सा भी कमी नहीं होगी। जब ये बात सुने श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो ने कहा श्रीवास ठाकुर को कि श्रीवास ठाकुर, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि हो सकता है लक्ष्मी स्वयं भिखारी के रूप में वो घर घर जाके भीख मांगना पड़े, ऐसा दिन आ सकता है, लक्ष्मी स्वयं भिखारी हो सकती है, लेकिन वो समय में भी तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। यानी दूसरे शब्दों में चैतन्य में आपने सारे जगत को श्रीवास ठाकुर के द्वारा सारे जगत को एक संदेश दिया, जिसका विश्वास उनके गुरु में, नित्यानंद प्रभु का गुरु तत्व है, उनके गुरु में जितना विश्वास होता है, अटूट विश्वास इसका होता है, उसके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं होती। दूसरी बात, अभी सब जगह फैल गया कि सब लोग इसी और बात करते हैं, श्रीवास ठाकुर कोई कुछ नहीं करता, गृहस्थ चलाने के लिए कोई काम धंधा नहीं करता, कुछ तो करना चाहिए। सब लोग बोलने लगे चैतन्य महाप्रभु जाके कुछ तो बोलो कि अपने घर चलाने के लिए कुछ तो धंधा करे, कुछ तो काम करे, कम से एक घंटा दुकान में कुछ तो करे। तो महाप्रभु जाके श्रीवास ठाकुर को कहा, हे श्रीवास ठाकुर, थोड़ा सा कुछ घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ तो काम धंधा करो। तो श्रीवास ठाकुर ने 3 बार ताली बजाए। महाप्रभु ने, ये क्या हो गया, ये क्या जवाब है, कुछ तो ताली बजाने से थोड़ी ना मिलता पैसा। श्रीवास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु ने पूछा, इसका अर्थ क्या है? श्रीवास ठाकुर ने कहा, मैं एक बार ताली बजाऊंगा, भजन करता रहूंगा, भूख लगे या कुछ जरूरत पड़े तो एक बार ताली बजाऊंगा, सब व्यवस्था आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो दूसरी बार बजाऊंगा, फिर भी नहीं आता है तो तीसरी बार बजाऊंगा, और क्या करूंगा, गंगा में कूद जाऊंगा। यानी उसका इनका कहना था, मुझे इतना विश्वास है अगर मैं भजन करूंगा तो भोजन जो है अपने आप आ जाएगा, हाँ अगर भोजन के पीछे भागूंगा तो भजन नहीं हो पाएगा। तो ये अटूट विश्वास श्रीवास ठाकुर का, ये बहुत 3 महत्वपूर्ण स्टोरी है श्रीवास ठाकुर का, हमेशा याद रखना चाहिए हर एक ग्रस्त को। जो नारद मुनि अपना ब्रह्मचारी व्रत को त्याग करके गृहस्थ बन के सारे जगत को उपदेश दिया उन्होंने, जो एकदम निवृत्ति मार्ग के आचार्य नारद मुनि, व्रज लीला में प्रवेश करने के लिए नारद जी ने गृहस्थ रूप का धारण किया। क्या उदाहरण दिया, ये 3 उदाहरण दिया, 3 संदेश दिया। सबसे पहला ये क्या है, संकीर्तन आंदोलन में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। संकीर्तन आंदोलन को महाप्रभु का जो संकीर्तन है वो, उसमें मेरा पारिवारिक समस्या का कोई प्रभाव नहीं रहना चाहिए। दूसरा, गुरु में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि मैं अपना भजन करता रहूं तो बाकी सब जो अपने आप आयोजन हो जाता है। ये 3 चीजें श्रीवास ठाकुर ने, परम वैराग्यों के मन में भी इस प्रकार की धारणा नहीं रहती है, वैसे जो महान विचार है नारद मुनि जो परम वैरागी हैं, वो श्रीवास ठाकुर का रूप धारण करके प्रकाशित किया और व्रज प्रेम को प्राप्त किया। इससे कहा जाता है नारद मुनि का 2 स्वरूप है, एक है नारद मुनि जो साधारण रूप में हम जानते हैं, जो घूमते रहते हैं, नारायण नारायण कहते रहते हैं, लेकिन उनका जो मूल नारद जी जो है वो श्रीवास ठाकुर है, जो इनका स्वरूप एक स्वरूप है व्रजलीला में, जहाँ नारद मुनि भजय वीणा राधिका रमण नाचे, वो नारद जी है श्रीवास ठाकुर है। और दूसरे नारद जी है जो वैकुंठ में अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, जो व्रज के नारद मुनि के विस्तार माने गए हैं। ये श्रीवास ठाकुर का ऐसे अनेकों अनेकों लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे ज़्यादा जो लीला है श्रीवास ठाकुर के साथ में है, उनके जो संन्यास के पहले की लीलाओं में देखेंगे सबसे ज़्यादा लीला श्रीवास ठाकुर, जो सबसे ज़्यादा समय जो है वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में बिताते थे, मैक्सिमम टाइम श्रीवास आंगन। कोई से पूछो महाप्रभु कहाँ है, उनका एड्रेस क्या है, कोई ये नहीं बोलता तो उनका घर इधर है, सच्ची माँ के पास जाओ, बोलते श्रीवास ठाकुर के घर में जाओ, ऐसा उनका श्रीवास ठाकुर घर का अपना समझा। मालिनी को अपनी माँ के रूप में देखभाल किया, मालिनी के साथ भी अनेकों अनेकों जो लीलाएँ हैं। ये श्रीवास ठाकुर विशेषता। श्रीवास ठाकुर की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।